الله وسلامه عليه وعلى آله وعياله وإطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الدائم على أعدائهم أعداء الله وأعداء كتاب الله وأعداء رسول الله وأعداء آل رسول الله لعنة أبد العابدين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قالت زينب الكبرى عقيلة بني هاشم وشريكة الحسين: فأما بعد يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر والخذل، ألا فلا رقات العبر ولا حدات الظفر. موضوع جو ہے ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبے ہیں، اور کل بھی ہم نے پہلی مجلس میں کوفے میں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کے پہلے ایک حصے کو بیان کیا، بلکہ حصہ نہیں تھا وہ، بلکہ آغاز تھا. حمد و ثنا الہی اور درود محمد و آل محمد کے بعد ثانیہ زہرا براہ راست، ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی اٹیک کرتی ہیں لفظی طور پر، اور واقعاً یہ جو کہا جاتا ہے کہ علی کے لہجے میں ثانیہ زہرا خطبہ دے رہی تھیں، تو صرف بات لہجے اور آواز اور انداز تک نہیں تھا، بلکہ جو الفاظ ہیں اس کی بندش ہے، جو علمی ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے، جو اس وقت کی سچویشن کے حساب سے مناسب طریقے سے ایک میسیج کو ڈیلیور کرنے کا ہنر ہے، جو کہ ہمیں کلام الہی یعنی کتاب اللہ المجید قرآن صامت کے بعد اگر کہیں یہ چیز نظر آتی ہے، تو اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین جو عقائدی طور پر معتزلہ فرقہ سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے اور اس جیسی شرح ابھی تک بے مثال قسم کی شرح ہے، ابن ابی الحدید معتزلی کہ یہ الفاظ ہیں کہ دون کلام الخالق یا فوق کلام المخلوق، فرماتے ہیں کہ خالق کے کلام کے بعد جو سب سے نمایاں کلام نظر آتا ہے وہ کلام مولائے کائنات ہے. لہٰذا جب آپ کی بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا خطبہ دے رہی ہے، خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں، تو وہی چیزیں جھلکتی ہیں اس خطبے کے اندر. طول تاریخ میں، گزشتہ تمام تاریخ میں، مسلمان و غیر مسلمان نے جس نے بھی ان خطبات کو پڑھا ہے اور ان بیانات کو جس کسی نے بھی دیکھا ہے، ان کے الفاظ یہی ہیں کہ کأنہو، لگتا یہ ہے کہ یہ کلام ایک ملکوتی کلام ہے، یہ عام کسی انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں. ایک زندہ ہیں، ابھی ہر سال اربعین میں بھی شرکت کرتے ہیں، لبنان کے ایک بہت بڑے عیسائی دانشور ہیں، جنہوں نے دو کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب آج سے کئی سال پہلے لکھی تھی، وہ جو ہے الحسین فی فکر المسیحی، امام حسین علیہ السلام عیسائی سوچ اور فکر اور ان کے خیالات کے مطابق، ڈاکٹر اطوان باران ان کا نام ہے. اور ابھی 25 سال مسلسل ریسرچ کے بعد ایک اور کتاب انہوں نے لکھی ہے، وہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی حیات طیب و طاہر کے اوپر ہے. ان دونوں کتابوں کو دیکھیں کہ یہ ایک عیسائی ایک عالم دین ہیں، ایک عیسائی دانشور اور مفکر اور پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی ہولڈر ڈاکٹر ہیں. ان کی کتابوں کو دیکھیں، یہ جو جملہ مشہور ہوا مسلمانوں کے درمیان اور بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ کربلا حسینی الحدوس و زینبی البقا ہے، یعنی جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ کربلا، امام حسین علیہ السلام نے کربلا برپا کیا، ثانیہ زہرا نے اسے بچایا اور پہنچایا. یہ مشہور جملہ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ یہ اسی ڈاکٹر اطوان بارہ کا جملہ ہے، جو اس نے اپنی پہلی کتاب کے اندر لکھتے 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 آخر میں وہ خلاصہ کرتے ہیں کتاب کا اس جملے کے اندر، ان الکربلا هو हुसैनी हदूस व जैनबी बका। ये डॉक्टर अदवान बारा अभी भी जिंदा है। लिहाजा सानिया जहरा जैनब कुबरा कुफे के अंदर हम्द सना मुख्तसर निसफ लाइन से भी कम हम्द सना बयान फरमाती है। अल्हम्दुलिल्लाह के बाद वस्सलात वस्सलाम अला अबी मुहम्मद रसूलुल्लाह व आलिह तय्यिबीन ताहिरीन। उसके बाद बराह रास्त बगैर किसी आगाज के, बगैर किसी जो है एक स्टार्टिंग के, डायरेक्टली अटैक करती हैं अहले कूफा को और डायरेक्टली क्रिटिसाइज करती हैं अहले कूफा को, और इंतहाई ऐसे अल्फाज के साथ जो रूहों को झंझोड़े, जो फिक्रों को झंझोड़े, जो इंसान को सोचने पर मजबूर करे। फरमाती व अम्मा बाद, और इस मुख्तसर सी हम्द व सना जिसके अंदर बहुत बड़ा एक ओशन पोशीदा है के बाद, या अहलल कूफा ओ कूफे के लोगो, अहलल गदली खतली वल गदर, कहता है ओ मक्कारो फरेब कारो धोखा देने वाले वालो, कहता है कि कहती है कि तुम रोते हो, अभी तुम रोने रोते हुए नजर आते हो मुझे, कह रहे कि इस रोने का फायदा क्या है, तुम्हारे ये आंसू खुश्क ना हो, तुम्हारी ये आहो फुगा और फरियाद कभी ना रुके, क्यों ये अंदाज, हमें ये अंदाज दमिश्क में नहीं मिलता है, वहां मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार करती हैं, यहां बराह रास्त अटैक कर रही हैं। इसके पीछे एक राज है, कूफा शाम नहीं है, शाम बनी उमैया के हाथों परवान चढ़ा है। शुरू से ही अल्लाह के रसूल के रहलत के बाद ये एक छोटी सी एक सोबा था, एक रियासत छोटी सा छोटा सा सोबा था, जिसमें माविया इब्ने सुफियान अबू सुफियान जो इस्लाम का पहले नंबर का दुश्मन था। अबू सुफियान के बारे में ये आया है अलुद्दुल खिसाम, अलुद्दुल खिसाम को कहते हैं नंबर एक दुश्मन, जो जाहिरी इस्लाम के बाद हजरत हमजा की सैयद शोहदा थे जंग बदर में, उस वक्त के सैयद शोहदा थे जब तक करबला बर्पा नहीं हुई थी, हजरत हमजा की कब्र में आके थूकते थे, पांव से रोनते थे, इंसल्ट करते थे और कहते थे हमजा उठो, देखो आज इक्तदार किसके हाथ में है, मुआशरे की बागडोर किसके हाथ में आई है, किसका कब्जा हो चुका है। एक ऐसे खबीस इंसान का बेटा जो मकार है, फरेबकार है, कोई अखलाकी हुदूद नहीं है उसके पास, किसी किस्म की कोई इंसानी हुदूद की रियायत और ख्याल नहीं करता, कोई एक अच्छी क्वालिटी माविया के पास नहीं, ये बिल्कुल क्लियरली बात है। इस हद तक ये गिरा हुआ इंसान है कि मशहूर साइंटिस्ट के तौर पे आप उसको जानते हैं, लेकिन उस साइंटिस्ट के दूसरे भी पहलू हैं। अबू रेहान अल बेरूनी अपनी किताबों और तसानीफ के अंदर लिखते हैं कि शाम में मूर्तियां बनती थीं, उन मूर्तियों को इंडिया भेजा जाता था, बरसगीर उस वक्त था, सब कॉन्टिनेंट बेचा जाता था क्योंकि वहां बुत परस्ती थी, बेचते थे और बदले में वहां से वो बांस की लकड़ियां, चमड़े और इस तरह की चीजें मंगाते थे, यानी तिजारत के लिए हलाल और हराम की कोई हुदूद देखता ही नहीं था मामला। मैं एक छोटे छोटे नमूने दे रहा हूं जो आम तौर पे लोग नहीं जानते, एकेडमिक बाउंड्रीज के अंदर की बहसें होती हैं, पब्लिक सुनना पसंद नहीं करती, आप इंटेलेक्चुअल हैं तो सुन रहे हैं, मगर पब्लिक को तो चटपटी मसालेदार चीजें चाहिए होती हैं जिसमें फिक्री और समाअत की या सुनने की इंजॉयमेंट हो उसके अंदर, वो इंटेलेक्चुअल बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होते, थक जाते हैं। वो मेरे क्लास फेलो भी हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, मौलाना साहब कल ही कहे पे शायद कराची में मजलिस पढ़े तो कह रहे थे कि कुछ मोमिनीन उनकी मजलिस में आए, मजलिस सुनने के बाद बाहर निकले तो एक दूसरे को कहने लगे मजलिस सुनने गए थे, दर्स कुरान गले पड़ गया। तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं वो इस तरह की डेप्थ के और इतनी गहराई से दीनी चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक आम पब्लिक होती है उसकी हम बात नहीं करते, वो बेचारे अलवाम कलवाम है, लेकिन जो समझदार हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो सात समंदर पार आए हैं, जो दुनिया देख चुके हैं, हम समझते हैं बस इस्लाम और करबला को चारदीवारी के अंदर बंद करके रहना चाहिए, ये मैसेज बाहर ही ना आए, करबला का कोई आफाकी मैसेज है या नहीं है, कोई इंसानी मैसेज है या नहीं है, करबला की तालीमात इंसानियत की फलाह के लिए है या नहीं है, तो क्यों नहीं देते हैं फिर फलाह के लिए है, दावा हमारा जो है वो दावा फिर हम प्रूफ क्यों नहीं करते, हम खुद उससे भागते हैं, जब हम खुद भागते हैं तो फिर ये हमारा दावा भी गलत साबित हो जाएगा, हम कहेंगे इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी, ओके प्रूफ कर दो इस बात को, इमाम हुसैन ने इंसानियत की क्या किया, इंसानियत के लिए कौन सी ऐसी मदर टेरेसा ने दी इंसानियत के लिए, ये किया ये किया ये किया ये किया। वो जो डॉक्टर पाकिस्तान में आई थी एक क्रिश्चियन जो वहां पर, क्या रूथ नाम है उनका, उसने सारी जिंदगी वहां पर जो है ऐसी बीमारियों के लिए उसने वक्फ कर दिया। बताएं हमारे इमाम ने कौन सी कुर्बानी दी कि हम इन एथियस्ट और दूसरे मजाहिब के लोगों के सामने कहें देखें ये हमारा इमाम है, आपके लिए भी कुर्बान हुए थे ये इमाम। किस तरह, हाउ, जब हम खुद नहीं समझेंगे करबला को, जब मुहर्रम और आशुरा हो, सफर हो, बातें गदीर की हम करते रहें और खैबर में मरहब को ही मारते रहें, उससे आगे हम निकल ही ना सकें, मरहब व अंतर से आगे हम बढ़े ही नहीं, क्योंकि पब्लिक को सुनना चाहती है, पब्लिक चाहती है छत फाड़ने वाले नारे लगे, पब्लिक चाहता है खतीब भी छत फाड़ने वाली बातें करे, चटपटी बातें करे, कानों की लज्जत हो उसमें, रूह की गजा ना हो, फिक्र की गजा ना हो, शऊर ना बढ़े, डेप्थ ना आए दीन की मारिफत के हवाले से, दूसरे को कैसे पेश करेंगे? कहेंगे अच्छा आपका हीरो है, जाहिर है हर कौम अपने हीरो को मनाती है, तो हुसैन इब्ने अली आपके हीरो हैं, आपका हक है आप अपने हीरो को मनाएं, हमसे लेना देना क्या है? दावा हमारा यह है कि करबला ऐसा मारका था जो इंसानियत को नजात देने के लिए आया, तो हम खुद अंडरस्टैंड करें ना, हाउ, कैसे ये इंसानियत के लिए नजात का जरिया है। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि ये नजात की कश्ती है। खूब, नजात की कश्ती स्पेसिफिकली एक खास टाइम के लिए है, नजात की कश्ती स्पेसिफिकली किसी कौम के लिए है, किसी कबीले के लिए है, अरबों के लिए था, मक्के वालों के लिए, मदीने वालों के लिए, करबला वालों के लिए, अराक वालों के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं है, नहीं है, चराग के हिदायत के चराग है ना, नजात की कश्ती है। हम खुद अंडरस्टैंड करें आज 21वीं सदी में कैसे प्रेजेंट करें इमाम हुसैन को, स्पेशली हम यूरोप में रह रहे हैं, अल्लाह के बंदो हम यूरोप में रहते हैं, कैसे अपने दीन का मैसेज डिलीवर करेंगे, कैसे हजरत ईसा को कैसे यहाँ के क्रिश्चियन प्रेजेंट करते हैं? आपने पता नहीं वो उनसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, मेरा तो अक्सर मिलता जुलता रहता है इन लोगों के साथ जो JW वाले हैं, जो विटनेस वाले मुबल्लिगीन हैं, आप देखें वो हजरत ईसा को कैसे प्रेजेंट करते हैं। मैं कहूँ जी मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूँ, कहता है ओके जीसस बिलोंग टू यू ऑल्सो, उनसे भी ताल्लुक रखता है, कैसे वो बार 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 आप सुनेंगे पे मजबूर हो जाएंगे, हाँ यार बात तो सही है, ये जो काम किया है हजरत ईसा ने ये एज ए ह्यूमन मुझसे भी ताल्लुक रखता है, हम कैसे प्रेजेंट करें कि मेरे इमाम ने भी जो काम किया था वो सब इंसानों के लिए था, अगर वो ना करते तो पूरी इंसानियत, इंसानों के सामने इंसानियत की मीनिंग खत्म हो जाती, तो ये हमें खुद अंडरस्टैंड करना होगा ना। आप तो जानते हैं एक्सपेरिमेंटल साइंस का दौर है आजकल, है ना, आप तो उसी से रिलेटेड हैं, जब तक कोई चीज प्रूफ ना हो जाए, जब तक कोई चीज सामने ना आए, एक्सेप्ट करने का दौर खत्म हो गया है, उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को कोई एक्सेप्ट नहीं करता जो आप प्रूफ ना कर सकते हो, जो किसी लेबोरेटरी में ना आए, जो किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर ना आ सके। फिफ्थ सेंस के अंदर नॉलेज को महदूद किया है, टूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टूल ऑफ डिस्कवरिंग, टूल ऑफ नॉलेज, जिसको एकेडमिक लैंग्वेज में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, मारिफत जिसको हम कहते हैं उर्दू अरबी जबान में, एपिस्टेमोलॉजी का दायरा और सर्कल कितना है, फिफ्थ सेंस के अंदर महदूद है। डिवाइन जो वही है, जो मशहूद है, जो मलकूत है, जो इरफानियात है, जो रूहानियात है, इसको कोई मानता है, अंडरस्टैंड करता है, नहीं करता है। लिहाजा अजीज तवज्जो रखने की जरूरत है, प्लीज दीन को समझने की कोशिश करो, ना करो बस ये ठीक है जो हम निभा रहे हैं। मैं जज़ाकुमुल्लाह कहता हूँ आप लोगों के लिए, आपने एहतमाम किया, मुझे से बंदे को यहाँ आखिर को दावत दिया, आप किसी बड़े आलिम दीन को बुलाते ज्यादा अच्छा होता, आपको बेहतर दीन सिखाता, लेकिन अब आपने बुलाया है तो मैं पूरी जान लगा के कोशिश करूंगा कि जो मैं समझता हूँ वो आपको दे के चला जाऊं, बता के, ये मेरा शरीफ फरीजा है, मेरी ड्यूटी है, कब्र से लेकर आगे तक दुनिया में शायद छुप जाऊं, लेकिन उस तरफ जाने के बाद हकीकतें खुलती हैं, वहां पर हकीकतें मुनकशिफ होने का पीरियड शुरू होता है, बाज लोग को यहीं पर भी हकीकतें देखते हैं। लिहाजा क्या फरमाती है, ए अहले कूफा, ओ मक्कारो, फरेब कारो, धोखा देने वालों, फ्रॉडियो, फ्रॉड करने वालों, रो रहे हो तुम लोग अभी हमें इस हालत में देखकर, रोना आ रहा है, इंसान हो ना, किसी एनिमल को भी मुसीबत में देखोगे, एक अच्छे इंसान हो, अंदर थोड़ा सा इंसानियत मौजूद हो तो रोना आएगा। एक आदमी ड्रामा देखता है, फिल्म देखता है, उसमें भी कोई सीन नजर आता है, जानता है ड्रामाटाइज है, उसके बावजूद उसके जज्बात, उसके आंसू छलक पड़ते हैं, क्यों? नेचर ऑफ ह्यूमन। तो ये जो आंसू है ये नेचर ऑफ ह्यूमन की वजह से है, न किसी मारिफत की वजह से। कूफा वालों, ये फरमाना चाहती है सानी हजारा, तुम्हारा ये रोना मगरमच्छ के आंसू है, क्योंकि अभी तुम्हें थोड़े से जज्बाती हो गए, रो रहे हो। अगर तुम्हारा रोना सच होता, वाकई तुम आले रसूल को इस हालत में देखकर रोते। अब इस जुमले से पहले मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा, अगर कि आपके जहन में मालूमात है उसको मैं जोड़ना चाहता हूँ। कूफा 4 साल मौलाए कायनात की हुकूमत का मरकज था, 4 साल सानिया जहरा मदरसा खोल के वहां बैठी हुई थी, मदीने की कंफर्ट लाइफ को छोड़कर उधर आई थी। इसी कूफे के अंदर सानिया जहरा ने दीन सिखाया है लोगों को, जो आज कैदी बनकर यहां तशरीफ ले आई है। इसी सानिया जहरा के बाबा दारुल अमारा से लेकर दार कजावत से लेकर कौमी खजाने तक का इख्तियार रखते थे इसी कूफे के अंदर। इस कूफे ने उस अजीम इमाम को देखा है जो हुक्मरान वक्त होने के बावजूद गरीबों और फकीरों के साथ फुटपाथों और सड़कों पर बैठकर उनको मिली हुए खजूर बांट के खाता था, उनकी दावत को एक्सेप्ट करता था, इसीलिए अबू तुराब मशहूर था। इसी शहर ने इस इमाम को देखा है, ये उसी इमाम की बेटी है जो रात को अपने कंधे पर रोटी और खाना पीना लेकर यतीमों के दरवाजों में जाते हैं। इस इमाम ने यह भी देखा है कि जब पता चला एक शहीद की बेवा जो बच्चे भी रखती है वो जो है किसी कस्म पुरसी के आलम में है, मुश्किलात में है, इमाम को पता चलता है, खुद दौड़ के चले जाते हैं, किसी को भेजते नहीं है, गुलाम से नहीं कहते हैं, हसनैन से नहीं फरमाते, किसी और से नहीं कहते, खुद चले जाते हैं, तंदूर में लकड़ियां डालते हैं, आग रोशन करते हैं, रोटी आटा गूंथते हैं, रोटी पकाते हैं और खातून को देते हैं और अपना चेहरा अकदस तंदूर की आग के करीब ले जाते हैं और कहते हैं, अली ये शहीदों की फैमिली है, यतीमों की फैमिली है, इनको कस्म पुरसी में नहीं रहना चाहिए, गुज़श्ता हुकूमतों की अकरबा परवरी की वजह से ये कस्म पुरसी में चले गए। ये कूफा है, ये तरबियत याफ्ता शहर है, ये फिक्री शहर है, ये विलाई शहर है, ये इमामत विलायत से आशना शहर है, ये बेमारिफतों का नहीं है शहर, यहाँ पे सरमाया लगाया गया है, मौलाए कायनात ने अपनी जिंदगी की उम्र का एक हिस्सा यहाँ सर्फ किया, सानिया जहरा ने, हसनैन अलैहिस्सलाम ने, दीगर अहम शख्सियात ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, टाइम का इन्वेस्ट किया है, मेहनत की है, इनको तरबियत दी है, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि एकदम से गरगट की तरह रंग बदल चुके हैं ये लोग। इसलिए फरमाया अहलल कूफा अहलल खात्री वल गात्री वल खजल का जलील कर दिया तुमने अपने आप को, जिल्लत की पस्ती में गए हो तुम लोग अपने आप। दूसरे अल्फाज में बॉटम लाइन क्या है, वो ये है अहले कूफा अच्छे अकीदे के बुरे अमल वाले लोग, बॉटम लाइन ये है, अच्छे अकीदे के बुरे अमल, ये खतरा मौजूद है जी, आज भी ये खतरा मौजूद है, यस हम सबके लिए भी है, यस हमारी नस्लों के लिए, यस कयामत तक सबके लिए। अच्छा अकीदा रखने के बावजूद बुरे अमल वाले हम हो सकते हैं, अकीदे विलायत के बावजूद विलायत को छोड़ के भागने वाले हो सकते हैं, अकीदे विलायत कंफर्ट जोन में है तो यस, अकीदे विलायत की वजह से मुश्किल आ जाए तो नो, ये हम ये हो सकता है, इज इट पॉसिबल, यस पॉसिबल। अगर ये आंसू सच्चे आंसू हैं, दिल की गहराइयों से निकले हैं, मारिफत से उठे हैं, तो अल्लाह के बंदो हमला करो, छुड़ाओ ना इन असीरों को, ओले कूफा। इसलिए कहा मकर के आंसू हैं, धोखे और फ्रॉड के आंसू हैं, ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो तुम बहा रहे हो, रो रहे हो, सीना पीट रहे हो, ये पीटना और रोने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर तुम्हारे इस रोने के पीछे कोई मारिफत पोशिदा होती, कोई एहसास जिम्मेदारी होती, को वाकयन इमाम के लिए इश्क होता, तड़प होता, तो तुम अभी हमला करते, कूदते, चलो शहीद ही हो जाते, जख्मी जख्मी खा लेते ना, इमाम कैदी है, आले रसूल कैद है, बच्चे कैद है, तो हमला करो। एक वाकया सुना है आपने, इस पूरे रास्ते में इतना लंबा 2000 किलोमीटर से ज्यादा रास्ता बनता है, इस पूरे रास्ते में काफिले पे कहीं हमला हुआ हो, बाज बस्तियों में कहीं पर एका दुक्का वाकयात मिलते हैं, वो भी अनजाने में हुआ है। अहले कूफा शहर को सटेन लेना चाहिए था, उनको उठना चाहिए था। सानिया जारा फरमाती, तुम अभी भी नहीं उठते हो, अगर तुम अभी कयाम करो, तुम अभी उठो तो इमाम वक्त मौजूद है ना, कोई अलग अलग ड्यूटियां तो नहीं है आइम्मा की, कुल्लुना नूरुन वाहिद है, कुल्लुना मोहम्मद है, सारे के सारे एक हैं। ये अली इब्न अल हुसैन हुसैन बनकर यही करबला सजाएगा कूफे के अंदर। तुम उठो, साथ दो, इमाम की मदद करो, इमाम की नुसरत करो, नहीं उठते। इसलिए इतने सख्त जुमले सानिया जहरा फरमाती बिगिनिंग ऑफ द खुतबे में, अगर ना होता ना इंसान थोड़ा सा बैकग्राउंड देता है, एक स्टार्टिंग लेता, नहीं 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 नहीं, नहीं। फरजदक ने रास्ते में इसको अगर सुनना है, फरजदक ने रास्ते में क्या कहा था, वो जो शायर अहले बैत था, रास्ते में आया, हालांकि फरजदक के ऊपर भी क्वेश्चन तो बनता है कि जनाब आप छोड़कर क्यों जा रहे हैं, मौला आपके इधर जा रहे हैं, तो आप उस तरफ, हो सकता है मौला ने इज्जत दिया हो उन्हें बाहर, लेकिन क्वेश्चन तो हिस्टोरिकली तौर पर बनता है, मौला ने इजाजत दी होगी, बोसुओं को इजाजत दी मौला ने, बोसुओं को मदीने से आने नहीं दिया, बोसुओं को कुछ जिम्मेदारियां देकर भेजी वगैरह वगैरह। लिहाजा गौर कीजिएगा फरजदक ने क्या फरमाया था, कूफे की मंजर कशी क्या की, क्या एनालिसिस पेश किया कि सिचुएशन इन कूफा कैसी है। फरजदक ने एनालिसिस किया, फरमाया देखो मौला, अकीदे में तो आपके साथ है, दिल आपके साथ है, जज्बा अंदर जो जज्बात हैं वो आपके साथ है, अकीदे में वो जानते हैं आप इमाम बरहक हैं, जैसे खत में लिखा था ना, लैसा लना इमामन गैरक अल अजल या मौलाया, आपके अलावा हमारा कोई इमाम नहीं है, जल्दी कीजिए मेरे मौला, जल्दी कीजिए मेरे मौला, 18,000 खतूत आए, तो हर खत में अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल लैसा लना इमामन गैरक, आपके अलावा हमारा कोई मौला, हमारा मौला बस आप हैं, हमारे आका बस आप हैं, हमारे इमाम आप हैं, आप हमारी हुज्जत हैं, ये सारी बातें हकीकत है, अकीदा उनका ऐसा ही है, मकाम अमल में धोखा खा गए। कुलूबुम, फरजदक ने क्या होगा फरमाया, शायर था, अदीबाना जुमला कहा, कहा अम्मा रुसा उन्नास, मौला रहे बात कूफे की, एलिट क्लास की बात करते हैं, रुसा यानी सरों को कहते हैं, सर यानी बड़े, बड़े यानी वही एलिट क्लास, कूफे के जो कबीलों के सरदार हैं, जिनकी अप्रोच है, असर और रसूख है, इन्फ्लुएंस है, उनकी बात पर पूरा कबीला उनकी बात पर अमल करता है, स्टिल अभी कबायली निज़ाम है ना, हमारे पास भी तो अभी भी खसूस के साथ सब कॉन्टिनेंट में मौजूद है ये कबीलाई निज़ाम, और सोचें अभी भी पूरा कबीला गलत रास्ते पर जाए तो सारे जाते हैं, क्योंकि कबीला चला गया है जहन्नम में जाए, कबीला आप हक के रास्ते पर चले, अभी भी कहा अम्मा रोसा उन्नास, जो कौम की एलीट क्लास है, जो बड़े हैं, इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं, लकद मूली अज्यूबहुम बिरिश्वतिहिम, कहा उनके जेबों को रिश्वतें देकर भरी गई हैं, अम्मा साइर अन्नास, पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक का हाल ये है कि कुलूबहुम माक वसयूफहुम गदन मशहूदन अलैक, कहते हैं कि दिल आपके साथ है, अकीदे में इमामत को मानते हैं, विलायत को मानते हैं, लेकिन अमल में कल तलवारें आपके खिलाफ लेके उठेंगे। आयतुल्ला जवादी आमली, हमारी सदी के मौजूदा इस सदी में मौजूद हैं, अजीम मुफसिर, दानिश्वर, फलसफी, फकी, कोई ऐसा शोभा नहीं है इल्म का जिसमें वो महारत न रखते, आरिफ बिल्ला वलीउल्लाह शख्स हैं, वो फरमाते हैं उमर साद की फौज का मैक्सिमम जो हिस्सा था वो कूफा और उसके अतराफ से जमा हुआ था, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में शाम से तो फौज आ नहीं सकती थी कि वहां पहुंच भी जाए, 10 मुहर्रम तक आए और सारा जो है वहां पर सफाराई करे, क्योंकि शाम से तो अच्छा खासा डिस्टेंस है, ये ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर से ज्यादा बनता है जो बादिया का रास्ता है उससे, जहां से आते जाते थे 1500 किलोमीटर से ऊपर है, तो हवाई जहाज तो था नहीं, ना ट्रेन था, ना मेट्रो है, ना बस है, ना कोई और है, तो घोड़ों में आते हैं, तो पॉसिबल तो नहीं एक पूरा लश्कर आ जाए, 30,000 का लश्कर, तो ये कूफा और उसके अतराफ से इकट्ठे हो गए थे, थोड़ा बहुत शाम से आया, थोड़ा बसरे से आया, थोड़ा दाएं बाएं से आ गया, ये लकूफा, दिल आपके साथ है, अकीदे में इमामत पर अकीदा है, अमल में इमाम के खिलाफ, क्यों रिश्वतें दी हैं कौम के, कहते यार मेरे घर के बड़े ने ये कहा है करो, वलो मेरे घर के बड़े ने मुझे खड्डे में डाला है, जहन्नम में फेंका है, इमाम के खिलाफ भड़काया है, क्योंकि मेरे घर का बड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में मैं मानता हूं उसकी बात, मेरे सारे कबीले ने इत्तेफाक कर लिया है कि हम उमर साद के इब्ने ज़ियाद के साथ देंगे, इमाम हुसैन के खिलाफ इकदाम करेंगे, हुसैन है तो नवासे रसूल, अकीदे में मैं हुसैनी हूँ, मैं इमाम हुसैन को मानता भी हूँ अकीदे में, वल्लाह वो हक पर भी है, लेकिन क्या करूँ, अब कबीले ने साथ दिया, कबीले को बड़े को रिश्वत मिली है, किसी को वादे मिले हैं, शिमर को शेर रे दिया है, ये सूरत हाल बनी हुई, कुछ डरे हुए हैं, कुछ खौफ ज्यादा है, कहते मारा जाऊंगा इस जंग में, खुद इमाम ने इसीलिए क्लियरिटी रखी थी, डे वन से कहा था कोई माल गनीमत नहीं मिलने वाली, कोई ना सोचे अच्छे घोड़े मिलेंगे, जब दूसरों को मारेंगे कत्ल करेंगे तो जंग में जो कुछ है वो मिलेगा, उसकी जरा मिलेगी, उसकी तलवार मिलेगी, हो सकता है कनीजे भी हाथ में आ जाए वगैरह वगैरह, बाद में जो है बैतुल माल से भी कुछ मिलेगा, फंड मिलेगा जो फौजों के लिए और जो शहीदों और जख्मियों के लिए मिलता है, ये कंसेप्ट लेकर आ रहे हो तो मेरे साथ मत आना, क्योंकि इस जंग में जाने देनी है, बदले में कुछ लेना नहीं है, दुनियावी एतबार से कुछ लेना नहीं है। मन कान मक्के में फरमाया, मन कान बाज़िलन फीना महजतहू, इमाम के अल्फाज हैं, खुतबा दिया, खुतबे के अल्फाज हैं। सानिया जारा इसलिए कहते हैं, कूफे वालों तुम्हें तो तरबियत दी थी हमने, तुम्हारे तो फिक्र बनाई थी, तुम्हें तो हमने सिखाया था, आप इतनी मक्कारी, इतनी धोखेबाजी, इतनी बेईमानी, ये क्या है तुम्हारा? ये कौन सा तरीका है कि दिल तुम हमारे साथ रखते हो, अकीदा हमारा रखते हो, अमल में तुम गुमराह हो चुके हो? ये खतरा, ये लिहाजा ये खतरा मौजूद है। मैं कैलकुलेट करता हूं, बस आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। देखिए मौलाए कायनात का नाजुल बलागा में बहुत सारे जुमले हैं, फरमाते अल इल्मु यहतिफू बिल अमल। ज़ेन मर्ग यहतिफू हातिफ से है, हातिफ अरबी जबान में आवाज देने को भी कहते हैं, साथ चलने को भी कहते हैं, आज भी हातिफ टेलीफोन को कहते हैं, इसीलिए जो लैंडलाइन होती है उसको हातिफ कहा जाता है अरबी जबान में, अगरचे और भी नाम आए हैं, जव्वाल, खलवी, पता नहीं क्या क्या। मौला फरमाते हैं, देखो नॉलेज, एलुम और मारिफत जो है ना, वो समरा देती है, नतीजा देती है, आपको किसी मंजिल तक पहुंचाती है जब वो अमल के साथ हो जाए। जस्ट जनरल नॉलेज इकट्ठी करनी है तो ठीक है, जनरल नॉलेज है मेरे पास, मैं जो है पता नहीं क्या विकिपीडिया बना हुआ हूँ, ओके गूगल बना हुआ हूँ, जनरल नॉलेज है, उस नॉलेज से मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, जस्ट इंफॉर्मेशन गैदर किया हुआ है मैंने, दीन की भी इंफॉर्मेशन गैदर किया हुआ है, बच्चों को भी वही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दीन की मारिफत नहीं दे रहे हैं। वो ऐसी इंफॉर्मेशन अमल में नहीं डलती है, जब अमल में नहीं डलेगी तो बेसमरा होगी, नतीजा उसका नहीं मिलेगा। इसलिए आप देखते हैं कुरान मजीद में जगह जगह पर कहा अल्लदीन आमनू, उसके बाद फौरन जुमला आता है क्या, अमिलु सवालिहात, आमनू अमिलु सवालिहात, आमिलु अमिल आमिनु अकीदा, अमिलु सवालिहात अमल। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज भी ये है, स्पेशली हम सब कॉन्टिनेंट के मोमिनीन और शिया और मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला है कि अमल के मैदान में हम पहले कमजोर थे, अब मेंबर से भी उस अमल की मुजम्मत होने लग जाती है वहां। और ये कहा जाता अकीदा ठीक होना चाहिए, अमल में कुछ भी कर लो, अच्छा तो फिर कूफा वालों का तो अकीदा ठीक था, कम से कम हम 100% कूफी ना कहें तो 80% 70% कूफियों का तो अकीदा ठीक था, उस ठीक अकीदे ने उनको नजात नहीं दिया, गलत डिसीजन ले लिया उन्होंने, गलत साइड इख्तियार कर दी, इमाम के अगेंस्ट खड़े हो गए। सिर्फ ये नहीं और भी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं, लिहाजा ये मत कहें कुरान के अगेंस्ट वाली बात हमें नहीं करना चाहिए। लिहाजा अजीजो इसलिए सानिया जारा बड़ी तकलीफ में है, बड़ी दुख महसूस करती हैं, मैंने तरबियत किया इस कूफे की और नतीजा ये है कि आज ये बस हमें देख रहे हैं, कैदी है, आंसू बहा रहे हैं, किसी में हिम्मत नहीं है आगे बढ़े, ललकारे फौजियों को, शहादत पेश करे, हमला करे, कहे मर्द औरतें सारे टूट पड़ो इनके ऊपर, जो होगा देखा जाएगा, टूट पड़ो आले रसूल को छुड़ाओ, हुसैनियों को छुड़ाओ, अली के जो है खानवादे को छुड़ाओ, किसी ने कोई हरकत नहीं किया। लिहाजा अजीजो देखें ये खतरा हमेशा मौजूद है, लिहाजा हमें चाहिए कि हमेशा आगाह रहें कि हमें अच्छे अकीदे के बुरे अमल वाले नहीं बनना है कभी भी, और परवरदिगार आलम से यहां दुआ करते हुए आगे बढ़े कि खुदाया आज शब जुमा है, शबे शहादत हजरत सकीना भी है, और इसी तरह इमाम जमाना का वास्ता देते हैं जो हाजिर भी है नाजिर भी है, हम इमाम के हुजूर हाजिर हैं, इमाम हर जगह हाजिर और नाजिर है, उस इमाम हुज्जत खुदा का वास्ता देते हैं कि परवरदिगारा जिस तरह हमें अच्छा अकीदा दिया है उसी तरह अच्छा अमल करने की भी तौफीक इनायत फरमा, सलवात बर मोहम्मद वाले लिहाजा अजीजो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, बस दो तीन और जो है जुमलों के साथ आपकी जहमत तमाम करूंगा, फिर उसके बाद फरमाती हैं अतबकून, रोने लग गए, फिर रो रहे हो, सवाल करती हैं अतबकून क्यों रो रो आकर, रोने की वजह क्या है? एक मुकालिमा है चौथे इमाम का, बस वो मुकालिमा मैं पढ़ता हूँ, आपकी जहमतें तमाम कर लेता हूँ। फरमाते हैं खरजा नासु लिन्नज़र इलैहिम फलामा अक़बला बिहिम अला जमाल बगैर विता जअल अन्निसा अल-कूफा यबकीन व यंदिबना, कहते हैं मुअर्रिख लिखता है कि मैंने देखा कि एक ऊंट के ऊपर जिसके ऊपर पालान भी नहीं था, मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे यानी हजरत सज्जाद को देखा, मोहम्मद, जिन्हें ऊंट से नीचे उतारा जा रहा था और मालूम हो रहा था कि इमाम जो है अपने घुटनों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, सख्त बीमार हैं और सफर की सौबतें हैं, जख्मी भी नजर आते हैं। कहने कि जब कूफे की खवातीन ने ये चीज, जाल निसा इल कूफा, कूफे की खवातीन ने जब ये मंजर देखा, यकीना रोना शुरू कर दिया। वह यंदुबना, यंदुब नुदबा से है, नुदबा यानी फरियाद करना, ऊंची आवाज से रोना। फलम्मा समियत अली इब्न अल हुसैन, जब ये आवाजें इमाम सज्जाद अलैहि सलाम ने सुना, देखा कि अहले कूफा की खवातीन रो रही हैं, तो उस वक्त इमाम ने फरमाया, वह हुआ यकूलु बिसौतिन ज़ईल। इमाम ने इंतहाई एक नहीफ और कमजोर आवाज, जैसे कि एक बीमार बोलता है, इस तरह की आवाज से इमाम ने फरमाया, वक़त न कहतिल इल्ला, क्योंकि बीमारी की वजह से गुफ्तगू नहीं कर पा रहे थे, फी उनुकी जामे अतुन, रावी कहता है कि इमाम की गर्दन में बेड़ियां लगी हुई थी, यदहु मगलूल इला उनुकी, इमाम के हाथों को पस गर्दन ले जाकर ऐसे बांधा हुआ था। उसके बाद इमाम ने फरमाया, इन्नहा उला इन्निस्वा यबकीना, कह रहे कि ये खवातीन तो रो रही हैं, ये तो बुका कर रही हैं, फमन कतलना, मेरा सवाल ये है कि फिर हमें कत्ल किसने किया है, क्योंकि जो हमारे कातिल हैं वो तो रो रहे हैं इस वक्त, अगर हमारे कातिल रो रहे हैं तो फिर हमें कत्ल किया किसने है, यानी इमाम क्या फरमा चाहिए, यही हमारे कातिल हैं जो इस वक्त हम मकतूल के ऊपर आंसू भी बहा रहे हैं। बिल्कुल अजीजो, ये वही मंजर है जिसे आपने मसाइब में सुना है, इसलिए तवज्जो कम दिया है। मैं गुजारिश करूंगा कि मसाइब में जाने से पहले इस पर तवज्जो जरूर दीजिए, घर में जाके भी सोच लीजिए, क्या वजह है कि आशूर की रात, क्या वजह है कि शाम गरीबा में, आशूर को बात लंबी होगी, शाम गरीबा में ये मलऊन आते थे, खेमों में आग लगाते थे, बालियां कानों से छीनते थे, सरों से चादर छीनते थे, हाथों में अगर किसी के कोई कड़ा या कोई ऐसी चीज है तो उसे वो जो है छीनते थे, और इनमें से बाज रोते भी थे। क्यों रोते थे, रोने की वजह क्या है, सवाल किया, खवातीन में से ही किसी ने सवाल किया, कहा या मलऊन लिमा तबकी, रोते क्यों हो, कहा कि क्योंकि मैं आप लोगों की इस हालत में देख रहा हूं, आपके ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। तो कहा कि अगर तुम इस हालत में देखकर तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है और रोना आ रहा है, तो फिर ये जुल्म कर क्यों रहे हो। तो कहता था कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और आएगा, ये छीन के चला जाएगा, तो बेहतर है मैं ना छीनूं। ये कौन सी सिचुएशन है जिसमें इंसान मुब्तला होता है, ये किस किस्म की नफ्सियात है, किस किस्म की साइकी है, ये किस किस्म की कंडीशन है कि इंसान जुल्म करते हुए रोए भी और उसके बाद लेकिन जुल्म भी करता रहे। यही सिचुएशन इमाम फरमाते हैं लकूफा के बारे में, अजी आज तुम हमें इस हालत में देखते हो तो तुम लोग रो रहे हो, अगर तुम रो रहे हो, तुम अगर हमें हमदर्दी का इजहार कर रहे हो, तो हमें कत्ल किसने किया, तुम्हारे ही मर्दों ने तो हमें कत्ल किया है, तुम्हारे ही लोग तो हमारे साथ के फौज में चले गए थे। सानिया जहरिया फरमाती है, अतबकून फला रिकाब दम ही वला हुदा तिरन्ना, क्या तुम लोग रो रहे हो, तुम्हारे आंसू कभी रुकने नहीं चाहिए, तुम्हारे ये जो दुख और गम की आहें हैं ना, ये हमेशा जारी रहनी चाहिए, कभी भी इन दुखों और गमों को नहीं रुकना चाहिए, इसलिए कि तुम लोगों ने रसूल जादियों को दुख में मुब्तला कर दिया है, तुम लोगों ने इसमत और तहारत की जो मलकाएं थी उसे सरे बाजार नंगे सर तुम लोगों ने फिराने के तुम लोग सबब बन गए हो। बस अजीजो, आज हुसैन की यतीमा का तस्करा करना है। मैं 5 साल सीरिया में रहा हूं और मुझे अंदाजा नहीं है, बेशुमार मरतबा इस बीबी के रोजे की ज्यारत नसीब हुई है। बेखुदा जब भी हम जानते थे, क्योंकि तारीखी एतबार से, जुग्राफियाई हवाले से चीजें हमने पढ़ी हुई थी और डीपली हमने अच्छी तरह सर्च किया था, तो जब जाते थे तो जब भी आंखें बंद करते थे थोड़ा सा तसव्वुर करते थे उस वक्त को। आप यकीन करें, जो ही बाजार शाम से एंट्री होती थी, एक खास किस्म की कैफियत का एहसास हम करते थे, दुख की कैफियत, गम व अंदोह की कैफियत, एक खास किस्म का एक रूहानी एहसास बनता था। जब भी इस मुकद्दसा मोहतरमा मुकर्रमा बीबी के हुजूर गए हैं जियारत के लिए, ये एहसास हमारे अंदर रहता था। बहुत से शुरू शुरू में जब हम गए थे तो हमसे रहा नहीं जाता था, जब बाजार शाम से गुजर कर इस बीवी के रोजे में पहुंचते थे। आप बीवी के रोजे में जाएंगे तो मर्दों वाली साइड पर भी और ख्वातीन वाली भी साइड पर भी, एक तो बीवी का ज्यारतनामा लगा हुआ है और दूसरा कुम से जो है आयतुल्ला हायरी ने गालिबन जो है बीबी की शहादत का वाकया भी अरबी जबान में, क्योंकि वहां अरब हैं, शाम के हैं, दूसरी जगहों से आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि शहादत की कैफियत कैसे हुई, किस तरह शहीद हुई, तो शहादत की पूरी जो है दास्तान लिख कर दोनों साइटों पर ज्यारतनामों के साथ एक पूरी जो है कतबा लगाया हुआ है फ्रेम करके। उसमें अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो शहादत पढ़ने जा रहा हूँ, जो एक आयतुल्लाह के हाथ की लिखी हुई है, जिसने रिसर्च के बाद डीपली वो तमाम चीजें वहां पर मेंशन की हैं। अजी दो, जब ये काफिला शाम में पहुंचा और यजीद मलऊन ने एक टूटे हुए जेल में जिसकी छत नहीं थी और थोड़ा सा एक हिस्सा था जिसकी जहां पर छत था, बाकी पूरा जो है हिस्से में छत नहीं थी, उस हिस्से में जो है कैद कर लिया असीरों को। जाहिर है कि सफर के दौरान तो सफर की कैफियत थी, मलऊन मौजूद थे जो बार बार जुल्म करते थे, ताजियाने मारते थे, तमांचे मारते थे, इतने शकी लोग थे, बस इतने खबीस और शकी लोग थे, इतनी जुरात करते थे कि आपस में एक दूसरे से, ये मुकालमे मौजूद है, आपस में एक दूसरे से कहते थे, बड़ी खामोशी है, बड़ी खामोशी है, क्या तुम नहीं चाहते हो इस खामोशी को तोड़ो? तो खामोशी को कैसे तोड़, खामोशी को कैसे तोड़ते थे? वो जाते थे, किसी बच्चे को नहीं मारते थे, हर बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाते थे। अजीजों माफ करना, मैं इस तरह मसाइब कभी नहीं पढ़ता, लेकिन ये अचानक मेरे जहन में आ गया। वो जाते थे हजरत सकीना को, इसलिए कि जब सकीना को तमाचा लगता था पूरा काफिला चीख उठता। पूरा काफिला आहों का फरियाद बुलंद, कितने शकी, इतने शकी थे, लानतुल्लाह या लद्दारिबीन, परवरदिगार आतिशे जहन्नम में मजीद इजाफा फरमा इन मलूरों के लिए। अजीज शायद चौथा या पांचवा दिन था या यही सफर के अय्याम थे कि इमाम हुसैन की ये यतीमा मजलूमा बेटी जो 7 से 8 साल की थी, एक रात ख्वाब में अपने बाबा को देखा, ख्वाब में देखा कि बाबा के सीने पे सोई हुई है। बीवी ख्वाब से उठी और बुका करना शुरू कर दिया, फरियाद करना शुरू कर दिया, कहा अम्मती, वो भी अम्मा, मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे बाबा के सीने पे सोना है। जानते हैं बीबी का असल नाम तारीख में रुकैया भी आया है, सकीना का मतलब है सुकून। जब इमाम आली मकाम घर में तशरीफ लाते थे तो अपनी बेटी को आवाज देते थे, कहते यहाँ सकीना तू अभी इलैया, ओ मेरे अपने बाबा के दिल का सुकून मेरी तरफ चला। इमाम सकीना लपक के उठती थी, बाबा के सीने में जाती थी, इसी तरह इमाम आली मकाम सीने से चिपकाए रखते थे, यहां तक कि नींद नींद कहाँ पे देखा, बाबा के सीने में सो रही है अजादारों। पूरे अहले बैत ने, तमाम असीरों में एक गम अंदोह की लहर छा गई, सबने गिरिया हो बुका करना शुरू कर दिया, सबने वाह हुसैना, वाह अली अकबर, वाह अब्बासा की सदाएं बुलंद करनी शुरू कर दी। आधी रात का वक्त था, ये कोहराम और फरियाद यजीद के कसर तक पहुंच गया। यजीद मलऊन रात को उठा, यजीद मलऊन ने कहा कि क्या खबर है, क्या इतलात है, ये शोर शराबा किस बात का है? कहा यजीद अमीर, बात यह है कि ये शोर शराबा उन कैदियों की जेल से आ रहा है, वहां एक बच्ची ने कोई ख्वाब देखा है जिसकी वजह से फरियाद और बुका बुलंद हो गई। यजीद कहता पता करो कि सूरत हाल क्या है, आगे खबर देते हैं अमीर, हुसैन की यतीमा बच्ची है जो अपने बाबा को ख्वाब में देख के रो रही है। कहता है अला बिल अहदिकुम, क्या तुम में से कोई एक नहीं है जो इसे चुप कराए? अमीर हावजना, हमने बहुत कोशिश की लेकिन ये बच्ची रोती नहीं है, जिसकी वजह से अहले हरम भी रोते हैं। यजीद कहता है, ये मलऊन शकी इब्ने शकी लानतुल्लाह, कहता अच्छा मैं चुपकी देता हूँ। अंदर से एक तश निकाल के देता है, कहता इसे लेके जाओ, इधर मासूम सकीना के साथ सब अहले हरम फरियाद कर रहे हैं, इतने में दरवाजे में दस्तक हो गई। दरवाजे के पीछे सानिया जहरा आ गई, कहा कौन हो, कहा अमीर की तरफ से आए हैं, कहा कि आधी रात को हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, कहा दरवाजा खोलना पड़ेगा, अमीर का हुक्म है, हम कुछ लेकर आए हैं, कहा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, अपने हाल पे छोड़ दो, अरे हमें मातम वगैरह तो करने दो। कहते नहीं, अमीर का हुक्म है, ये हुसैन की यतीमा बच्ची के लिए अमीर ने भेजा है। इमाम से इज्जत लेती है, इमाम इजाजत देते हैं, दरवाजा खोलते हैं और उस तश को लेते हैं, समझते हैं शायद कोई खाने पीने की चीज होगी, तश को लेके सीधे जो है हजरत सकीना के सामने जाते हैं, कहते बेटा सकीना चुप हो जा, देखो तुम्हारे लिए कुछ आया है। मासूम सकीना ने जो तश से कपड़े को हटाया, बस असरदार हो आप समझ गए हैं। जोर से आवाज दी, भाभी कया अबती, अरे बाबा जान आपके साथ ये किसने किया। एक चीख बुलंद हुई, हुसैन की यतीमा हुसैन के साथ जा मिली, बहश्ते मरी में बाबा के सीने में पहुंच गई, अहले हरम ने आहो बुका करना शुरू कर दिया, हर किसी ने कहा सकीना इतना लंबा रास्ता हमारे साथ, अब जो है सकीना हमें तनहा कर दिया, तेरे बाद जी के क्या करें। अलाल अलकोम बस या अलमुल्लादीन अलम व यमन तलवी।